ठाकुर, तीसरी बार श्रीनिवास ठाकुर। ठीक है। जे अनिलो प्रेम, क्षमा करना, श्रील गदाधर दास गोस्वामी तेरो भाव तिथि महाबहुत सुखी, श्रील धनंजय पंडित तेरो भाव तिथि महाबहुत सुखी, श्रील श्रीनिवास आचार्य तेरो भाव तिथि महाबहुत सुखी। हरि बोल। तो आज ठीक है, अभी आवाज सही है ना, तो छेड़ना नहीं, ठीक है। तो आज कितने त्योहार हैं? तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, कितने त्योहार हैं? पांच हैं, चार, चार, चार हैं, पांच, चार हैं, तीन तो तेरो भाव हैं, और एक गोपाष्टमी और एक गोष्ठाष्टमी जो लिखा नहीं है, बोर्ड में नहीं लिखा है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा है, हमने तो छापा है, है? तो आप गोपाष्टमी गोष्ठाष्टमी में अंतर नहीं जानते क्या? है पहली बार से गोष्ठाष्टमी जो त्योहार है ये बहुत प्राचीन है, गोपाष्टमी तो बाद में हुआ, 5000 साल पहले जब कृष्ण को गोप बनाया गया तो वो गोपाष्टमी का ये जो है त्योहार बन गया, है ना। उसके पहले गोपाष्टमी नहीं था, लेकिन गोष्ठाष्टमी ये जो त्योहार है ये बहुत प्राचीन है, है? गोष्ठ ये इसका संबंध है गोष्ठ से, है ना। गोपाष्टमी का मतलब है कि जब भगवान कृष्ण को वत्सपाल से गोपाल बनाया गया, वत्सप और गोप, पा या पाल का मतलब है पालन करने वाला, है ना। तो कृष्ण जो है वत्सपाल से क्या बन गए? गोपाल, या वत्सप से गोप, पा का मतलब पालन करने वाला। तो उनको जो है बछड़े चराने की अनुमति मिली थी, इसके आगे नहीं। तो आज के दिन जो है उनका प्रमोशन हुआ था, वत्सपाल से क्या बन गए? गोपाल बन गए, जैसे किसी का प्रमोशन होता है ना तो उनको गऊएं चराने का आज के दिन अधिकार प्राप्त हुआ था, है ना। तो चूंकि कृष्ण का जो है एक नया जन्म है गोप के रूप में, वत्सप से गोप, इसलिए इसे कहते हैं गोपाष्टमी। लेकिन गोष्ठाष्टमी का क्या मतलब? गोष्ठ का मतलब क्या है? जहां गौएं रहती हैं उसे गोष्ठ कहते हैं। तो ये जो गोष्ठ है ये गौएं जो है रात्रि के समय निवास करती हैं, सवेरे सवेरे उनको छोड़ा जाता है, गोष्ठ से निकलती हैं, बंधन मुक्त होती हैं और वन में जाती हैं, वन में जाती हैं, उनका नियम है वन में जाने का, और दिन भर वो अपना भोजन करती हैं, घास खाती हैं, कोई उनके पीछे जाए या ना जाए वो स्वतः भी निकल जाती हैं। तो जो गोपाल हैं गोप लोग हैं तो उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनका कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें, वो सेवक होते हैं गौओं के। लेकिन अगर किसी कारण से अगर वे गोप लोग जो है अगर नहीं भी जाते हैं गौओं के पीछे पीछे तो वे चली जाती हैं, और गौओं को जो है समय निश्चित होता है वापस आने का। तो जैसे ही अंधेरा शुरू होता है तो गोधूली की बेला कहलाती है, तो वो जो है वापस आ जाती हैं, और वे गौएं जो है जहां से निकली थी वहीं अपने वापस चली जाती हैं। उनको समय का बड़ा जो है पक्का ज्ञान रहता है गौओं को। तो गोष्ठाष्टमी का मतलब ये होता है साल में एक दिन गोष्ठ की सफाई होती है खूब अच्छी प्रकार से, रोज सफाई की जरूरत नहीं है गोष्ठ की, क्योंकि गोष्ठ में होता क्या है, दिन भर वो जो है भोजन करते हैं गौएं, घास खाती हैं, तो गोष्ठ में वो मल मूत्र त्यागती हैं। गौओं का जो मल और मूत्र है वो इतना पवित्र है, गौओं के मल में भी लक्ष्मी का निवास है, पूजा के स्थान को भी पवित्र किया जाता है गाय के मल के द्वारा, है ना, गोमूत्र भी बहुत पवित्र है, तो इसलिए रोज सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, वैसे ऊपर ऊपर सफाई कर दी जाती है और गोबर से लेप कर दिया जाता है तो वो जो है स्थान स्वच्छ माना जाता है, धूल मिट्टी तो रोज सफाई की जाती है, लेकिन खूब अच्छी तरह से अंदर से बाहर से खूब सफाई की जाए तो वो जो है आज का दिन होता है, जिसे कहते हैं गोष्ठाष्टमी। आप समझ गए, तो मनुष्य का जो मलमूत्र है वो इतना पवित्र है कि रोज सफाई होनी चाहिए, लेकिन गवों का जो मलमूत्र है, मैंने क्या कहा, अपवित्र ना, अपवित्र है, मनुष्य का मलमूत्र अपवित्र है, लेकिन गवों का मलमूत्र इतना पवित्र है कि रोज सफाई की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही ऊपर ऊपर से उसका लेप कर दिया जाए और कूड़ा निकाल दिया जाए तो पर्याप्त है। तो आज के दिन जो है गोष्ठाष्टमी, मतलब खूब अंदर से बाहर से खूब सफाई करके जो है गवों को जब निकाल दिया जाता है तो फिर सब जो गोप लोग हैं वो जुट जाते हैं, गोष्ठाष्टमी का दिन है। लेकिन गोष्ठाष्टमी का जो है वो गोपाष्टमी भी बन गया है, तो एक अलग घटना है कि वो गोपाष्टमी भी बन गया। तो कृष्ण की इच्छा होती है गौएं चराने की, लेकिन उनको जो है अनुमति नहीं मिलती है, तो कृष्ण जो है इस बात से जो है कुछ दुखी रहते हैं कि मुझको जो है गौएं चराने की अनुमति नहीं मिलती, बछड़े चराने की अनुमति मिल गई, क्योंकि बछड़े लेकर के कृष्ण जाएंगे तो पास ही में जो है वो बछड़े चराएंगे, लेकिन गौएं जाती हैं दूर और कृष्ण जो है दूर जाएंगे तो कृष्ण की फिर सुरक्षा की समस्या हो जाती है, इसलिए कृष्ण को जो है गौएं चराने की अनुमति नहीं दी गई अभी तक। लेकिन फिर हुआ क्या, आज के दिन गौएं जब खोली गई तो स्वतः वो चली जाती हैं वन की ओर, आज के दिन वो नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, है ना, मतलब क्या स्ट्राइक, आज गौओं ने स्ट्राइक कर दी कि वे नहीं जाएंगे, तो जो गोप लोग हैं वो हांक रहे हैं गौओं को, है ना, गौओं को डंडा नहीं मारते हैं, डंडा दिखाते हैं या थोड़ा सा मतलब खेलते हैं कि वो आगे बढ़ें, लेकिन गौएं जो है जितने आगे बढ़ाई जाती हैं वो फिर से लौट के पीछे आ जाती हैं, नहीं जा रहे हैं, तो आज बड़ी समस्या होगी गौएं क्यों नहीं जा रही हैं, है ना। और यहाँ पर कृष्ण भी जो है, कृष्ण ने भी समस्या पैदा कर दी, नंद महाराज से वो जो है अनुमति चाहते थे कि उनको गौएं चराने की अनुमति प्राप्त हो, नंद महाराज ने कहा कि नहीं पुत्र, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम तुम्हें अनुमति नहीं दे सकते हैं गौएं चराने की। तो कृष्ण जो है एक कोने में जाकर के रोने लगे। तो नंद महाराज को समझ में आया कि मेरे पुत्र को कष्ट हो रहा है, वो तो नहीं समझे थे कि मेरे पुत्र को जो है मतलब इतना कष्ट होगा, जब देखा लालन तुम रो रहे हो तो कृष्ण जो है सिर हिला रहे हैं, तो मतलब कृष्ण चाहते हैं आज लोगों को चरण चाहते हैं, तो दोनों तरफ से अब जो है नंद महाराज के ऊपर प्रेशर आ गया, एक गौओं का भी प्रेशर दबाव, गौएं नहीं जाएंगी कृष्ण के बनाने जाएंगे गौएं, और यहाँ पर कृष्ण का भी दबाव जाएंगे, तो फिर माता यशोदा को के लिए तो आज का दिन बहुत ही कष्टकारक रहा। जैसे गोपाष्टमी में महोत्सव मनाया जाता है कि भाई बड़े हर्ष की बात है कि आज कृष्ण को जो है गौएं चराने का अधिकार प्राप्त हुआ, नंद महाराज के लिए और यशोदा जी के लिए तो विशेष रूप से बहुत कष्ट का दिन है आज, और गोपियों के लिए बहुत कष्ट का दिन है, क्योंकि दिन भर जो है उन्हें कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त होगा। लेकिन खुशी की बात, खुशी का दिन किन के लिए है? गौओं के लिए, और किन के लिए? सखाओं के लिए, कृष्ण के सखाओं के लिए खुशी का दिन है। तो ब्रज में जो है कुछ लोगों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है और कुछ लोगों के लिए आज बहुत कष्ट का दिन है, शोक दिवस है ना। माता यशोदा को तो बहुत शोक हो रहा है कि कृष्ण जो है अब उनकी आंखों से बहुत दूर चले जाएंगे, और कृष्ण जब जाना चाहते हैं, कृष्ण के चरण बहुत कोमल हैं, कृष्ण के चरण के तलवे बहुत कोमल हैं, और वे नंगे पैर जाना चाहते हैं गौओं के पीछे, बछड़े लेकर के जाएंगे तो पास भी जाएंगे तो जमीन भी जो है इतनी कठोर नहीं है, कंकड़ नहीं है, कांटे नहीं है, पास में ही बछड़े चराएंगे, लेकिन जब जंगल में जाएंगे दूर तो कंकड़ भी बहुत, पत्थर भी हैं और कांटे भी हैं, और कृष्ण के पैर नंगे हैं, कृष्ण के चरण भी नंगे, तो माता यशोदा को बहुत कष्ट होता है। तो उन्होंने जो नई जो पादुका है, चरण पादुका जूतियां कृष्ण को ला करके दी कि पुत्र तुम इनको पहन करके आज जाओ गौ में चराने के लिए। और छत्र दिया कि कोई बालक जो है कृष्ण के ऊपर छत्र भी धारण करेगा, क्योंकि आजकल की धूप तेज भी होती है, जाड़ा भी है, लेकिन साथ साथ धूप भी तेज होती है ना। धूप से रक्षा के लिए एक छत्र, और पैरों की रक्षा के लिए क्या जूते, है ना। तो कृष्ण ने जो है उत्तर दिया माँ से कि माँ मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग गौओं के सेवक हैं, इसलिए से गोकुल कहा जाता है। गोकुल कहते गौओं का कुल है, जैसे गुरुकुल होता है गुरु का परिवार गुरुकुल कहते हैं, ऐसे ही गोकुल गौओं का परिवार। गौओं के परिवार के जो गोप लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सेवक होते हैं। वो सेवा मतलब मालिक तो गौएं हैं, तो हम लोग गौओं के सेवक हैं। तो कृष्ण का उत्तर था कि माँ हम लोग गौओं के सेवक हैं, और मालिक अगर कोई चीज मतलब नहीं इस्तेमाल करता है तो वो सुविधा सेवक को नहीं स्वीकार करनी चाहिए, है ना। जैसे कि राजा की वेशभूषा कोई अगर दूसरा व्यक्ति धारण कर ले नागरिक, तो उसको पकड़ा जाएगा कि राजा की वेशभूषा क्यों धारण की तुमने, है कि नहीं। तो पहले ऐसे ही था, राजा का महल जैसे होता था ऐसा अपना महल कोई नहीं बनाए, सामान्य व्यक्ति को अपना ऐसा महल नहीं बनाना चाहिए, राजा के महल की तरह नहीं बनाना चाहिए, है ना। राजा का रथ जैसा है ऐसे रथ पर कोई सवार ना हो, राजा के चरण कोई धारण ना करे, ये विधि है। लेकिन आजकल सब सबकी वही गाड़ी है, सब सब घर हैं, क्यों, क्योंकि प्रजातंत्र, प्रजा ही राजा है। ये प्रजातंत्र है ना, तो प्रजा ही राजा है। उसी को प्रभुपाद जी कहते थे डेमोक्रेसी डीमन क्रेजी, है ना, असुर और पागल है सब। तो राजतंत्र में जो है मतलब इस प्रकार का होता था कि राजा जो है जो सुविधाएं और जो सुख स्वीकार करता है तो सामान्य प्रजा को वो नहीं स्वीकार करना चाहिए। जैसे सत्राजित को जो है सूर्यदेव ने मणि प्रदान करी, सिमंतक मणि प्रदान करी, तो भगवान कृष्ण को दिखाने के लिए आए वो, तो भगवान कृष्ण का कि विधि यह है कि ये मणि जो है राजा को दे दो, और कृष्ण राजा नहीं है द्वारका के, द्वारका राजा उग्रसेन है, कृष्ण भी अपने को सेवक समझते हैं राजा का, राजा को दे दो, राजा को देना। सुविधा हो तो राजा को भेंट देना चाहिए। इन सत्राजित ने भगवान कृष्ण की आज्ञा स्वीकार नहीं की, कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सिमंतक मणि में उसको बहुत आसक्ति थी। तो उस भी कारण से कि कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया, वो भी मारे गए और उनके भाई प्रसेनजीत भी मारे गए, है ना, मणि के कारण है। प्रसेनजीत गले में मणि धारण करके गया जंगल में शिकार खेलने, शेर ने मार डाला ना? और फिर मणि किसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने पता लगा करके सत्राजित को दी, कि सत्राजित ने फिर कृष्ण के ऊपर आरोप लगाए कि कृष्ण ने मणि छीन ली, कि कृष्ण ने कहा था राजा को दे दो मैंने नहीं दिया, तो कृष्ण जो है मेरे भाई को मार डाला और मणि छीन ली, और उल्टा आरोप लगाया। तो कृष्ण ने फिर ऐसे आरोप से बचने के लिए सत्राजित के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मणि का पता लगाया और फिर मणि सबको सामने दी और इस आरोप से मुक्त हुए कृष्ण। तो कृष्ण का तो इतना त्याग है ना, लेकिन सत्राजित ने जो है ये चूंकि कृष्ण के ऊपर ऐसा आरोप लगाया था और क्षमा प्रार्थना नहीं की, तो उसका परिणाम यह हुआ कि फिर सत्राजित की भी हत्या हुई और मणि सद्धनवा लेकर के भागा। तो इस तरह से राजा को जो है मतलब जो सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए वो सामान्य व्यक्ति को नहीं स्वीकार करना चाहिए, प्रजा को नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का कहना है कि गौएं चूंकि छत्र धारण नहीं करती हैं और जूते धारण नहीं करती हैं, तो हम गौओं के सेवक हैं, तो हम भी छत्र और जूते धारण नहीं करेंगे। तो माता ने कहा कि पुत्र गौओं के तो जो जूते हैं वो पैर में पहले से फिट होते हैं, है ना, उनके जो खुर होते हैं वो जूते की तरह हैं, खूब मजबूत हैं, तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे चरण तो बहुत कोमल हैं और गौओं को तो अभ्यास है धूप सहन करने का, तुम्हारा तो अभ्यास नहीं है, है? तो तुम्हारी कैसे रक्षा होगी। तो माता के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बोलते हैं कि माता यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। तो हम गौओं के सेवक हैं तो सेवक के धर्म की हम रक्षा करें, सेवक के धर्म की रक्षा करें, मतलब हम गौओं से ज्यादा अपना कुछ सुख सुविधा ना स्वीकार करें तो ये धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। तो भगवान ने क्या कहा, धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म कि कोई अगर रक्षा करता है तो वो धर्म ही उसकी रक्षा करेगा। तो धर्म का आपके साथ संबंध किस तरह का है, अन्य अन्योन्याश्रित धर्म, मतलब आप अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, आप अपने धर्म को नष्ट करोगे तो धर्म आपको नष्ट कर देगा, यह भी बात है ना। तो फिर माता को जो है फिर कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन बहुत कष्ट के साथ माता ने जो है कृष्ण को विदाई दी। और जब कृष्ण जो है गऊओं को लेकर के चले तो गोपियों के लिए बहुत कष्ट की बात थी, लेकिन गोपियां तो किसी को अपना कष्ट बता भी नहीं सकती, क्योंकि ये तो जो मर्यादा है मर्यादा के अनुसार तो कृष्ण से उनको मिलना ही नहीं चाहिए, है ना। तो गोपियों को जो है बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वे अपना कष्ट नहीं बता सकते। और ऐसी स्थिति में राधा रानी जो है चूंकि दौड़ी थी कृष्ण का दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने अपने पैर से जो वस्त्र हैं थोड़ा ऊपर उठाए थे ताकि वो दौड़ सकें, तो इसलिए आज के दिन राधा रानी के चरण दर्शन हुए, है ना। तो यही कारण है, या कुछ और है, मैं जानना चाहे तो कुछ और है, यही है। तो राधा रानी ने चूंकि अपने पैरों से वस्त्र ऊपर उठाए थे दौड़ने के लिए कि कृष्ण के दर्शन वो कर पाए, तो इसलिए आज राधा रानी के चरण का दर्शन हुआ। और गऊएं भी जो है गऊओं को भी चूंकि पता चला कि कृष्ण आज पहली बार हमें चराने के लिए जा रहे हैं और कृष्ण के पैर नंगे हैं, तो गऊएं आगे आगे चलेंगे और कृष्ण पीछे पीछे चलेंगे, तो गऊओं को भी जो है इतनी चेतना है कि कृष्ण के जो है चरणों में कांटे और जो कंकन है वो ना लगे, तो उन्होंने अपने खोरों से जो है खुरों से जमीन को इतना समतल किया, कंकड़ पत्थर कांटे सब जो है ऐसे पाउडर बना दिए कि कृष्ण के चरणों के लिए क्या हो जाए, बढ़िया कोमल चिकनी भस्म हो जाए, है ना। तो गऊ चलते तो वे स्वभाव से जो है कंकड़ पत्थर है वो मतलब वो होते ही हैं, कुछ तो चिकने होते ही हैं, टूटते हैं, है ना। लेकिन गऊ ने विशेष रूप से कृष्ण के लिए कि कृष्ण जब चलेंगे तो वो जो धूल है और जो कंकड़ है कांटे हैं ऐसे मतलब कर दिए, चूर्ण कर दिए कि कृष्ण के चरणों को कष्ट होने के बजाय क्या मिले, सुख मिले। पैरों में जो है अगर आप बड़ी महीन आप बालों में चलते हैं जो बहुत चिकनी हो तो पैरों को अच्छा लगता है ना, है ना। तो कृष्ण के चरणों को जो है अच्छा लगे, तो गऊ ने इस तरह से किया। तो आज के दिन जो है ये लीला हुई थी गोष्ठाष्टमी और गोपाष्टमी। अब हम सुनेंगे गदाधर दास गोस्वामी का आस्तिरुभाव है, क्योंकि इस नाम के आगे हाथ का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है गदाधर गोस्वामी का हमारे वैष्णव कैलेंडर में तिरुभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता, साल में केवल एक ही दिन आता है। गदाधर दास गोस्वामी धनंजय पंडित इन दोनों के नाम में हाथ का चिन्ह है, इसका मतलब धनंजय पंडित का भी आज तिरुभाव है, आविर्भाव नहीं आता, तो साल में केवल एक ही दिन होता है इनको याद करने का। श्रीनिवासाचार्य का आविर्भाव तिरुभाव दोनों आता है, दो दिन हम याद करते हैं श्रीनिवासाचार्य को। तो गदाधर दास गोस्वामी के विषय में सबसे पहले हम सुनेंगे तो समाधि पुस्तक से पहले, फिर हम सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के मुख्य रूप से दो समूह हैं। एक समूह है जैसे द्वादश गोपाल हैं, ये सख्य भाव में नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं। आप समझ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो संगी हैं वो दो प्रकार के हैं, एक कौन है सखा और दूसरे सखियां, ठीक है ना। जो सखा हैं जैसे द्वादश गोपाल हैं, अभिराम गोपाल, गौरीदास पंडित, धनंजय पंडित, ये सख्य भाव में नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं। और दूसरे जो संगी हैं वो माधुर्य रस में लीन है, मतलब राधा रानी की सखियां हैं। तो गदाधर दास गोस्वामी ये चंद्रकांति गोपी हैं और पूर्णानंदा भगवान बलराम के प्रिय सखी के विस्तार का संयुक्त रूप है। गदाधर दास गोस्वामी में जो है दो सखियां हैं, एक तो कृष्ण की सखी चंद्रकांति गोपी है और दूसरा पूर्णानंदा बलराम जी की सखी। तो दोनों ने जो है गदाधर गोस्वामी के शरीर में निवास किया हुआ है। इस प्रकार से गदाधर दास श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के ही संगी हैं। कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु को राधा भाव द्वितीय सुबलित अर्थात श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति से युक्त कहकर वर्णित करते हैं। गदाधर दास यही कांति हैं। गदाधर दास को कभी कभी श्री राधिका की दिव्य दीप्ति का मूर्त रूप भी कहा जाता है। नित्यानंद प्रभु के संग यात्रा करते समय गदाधर दास कभी कभी माधुर्य प्रेम में तन्मनस हो जाते हैं। तो ये चूंकि सखी भाव में तो क्या होता है, नित्यानंद प्रभु के संग जब ये यात्रा करते हैं तो जो उस समय की घटना है, जब भगवान चैतन्य संन्यास ले चुके हैं और जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो भगवान ने जब संन्यास लिया था तो माता सची की आज्ञा थी कि तुम जगन्नाथपुरी छोड़कर के कहीं नहीं जाना, जगन्नाथपुरी में ही रहना। तो इससे क्या होगा कि मुझे तुम्हारा समाचार मिलता रहेगा, क्योंकि जगन्नाथपुरी से गौड़देश बहुत लोग आते जाते हैं, तो तुम्हारा समाचार मिलता रहेगा। तो माता की आज्ञा से चूंकि चैतन्य महाप्रभु बंधे हुए हैं तो इसलिए वे जो है प्रचार के लिए जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। जबकि उनका मुख्य प्रयोजन क्या है, हरि नाम का प्रचार है। तो फिर अपना जो कार्य है वो नित्यानंद प्रभु को सौंपते हैं भगवान चैतन्य कि मैं तो माँ की माता की आज्ञा से बंधा हूं, लेकिन आप जाइए और गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार कीजिए, कृष्ण प्रेम फैलाइए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जब जाते हैं जगन्नाथपुरी से गौड़ देश, तो उनके साथ में चैतन्य महाप्रभु ने इन संगियों को दिया है, जिन्हें एक संगी है गदाधर दास गोस्वामी। तो गदाधर दास जो है जब नित्यानंद प्रभु के संग यात्रा करते हैं तो कभी कभी माधुर्य प्रेम में तन मनस हो जाते हैं और एक ब्रज गोपी की भांति व्यवहार व वार्तालाप करने लगते। गंगा जल से भरा कलश अपने सिर पर धारण कर मानो वे एक गोपी हूँ, पुकार उठते दूध ले लो दही ले लो। तो ये जो है उनका भाव, वो ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वे पुरुष रूप में है, हालांकि पुरुष का शरीर है ना। तो उसमें ये नहीं कि स्त्री की वेशभूषा धारण करें, यह सखी भेकी एक संप्रदाय है जो कि अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी कहते हैं, तो सखी भेक यानी सखी का भेष धारण करते हैं वो लोग, है ना। तो बहुत ही ये हंसी की बात है और निंदा की बात है कि पुरुष के शरीर में जो है स्त्री की वेशभूषा धारण करते हैं वे लोग, और सखियों के नाम भी एक दूसरे को दे देते हैं और पुकारते हैं, ललिता सखी विशाखा सखी, इस तरह से है। तो सखी भेकी संप्रदाय कहलाता है। ये सब अप संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु से इनका संबंध नहीं है। अपने ढंग से ये लोग व्यवहार करते हैं और जो नियम बताए गए हैं वैष्णवों के लिए उन नियमों के भी पालन नहीं करते हैं, और अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते हैं। और भक्तिवर ठाकुर ने इनको जो है क्या किया है, उजागर किया है कि ये लोग जो है चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए नहीं है, ये वैष्णवों के समाज को कलंकित करने वाले हैं इनका जो आचरण है। लेकिन गदाधर दास गोस्वामी जो है पुरुष के ही वेशभूषा में है, लेकिन चूंकि गोपी भाव में आ जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि वो बनावटी तौर में ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं, वो सचमुच गोपी भाव में वो सिर में जो है गंगा जल का घड़ा लेकर के इस तरह से बोलते हैं, दूध ले लो दही ले लो। बंगाल में नित्यानंद प्रभु के एक प्रमुख प्रचारक के रूप में गदाधर दास ने अनगिनत पापियों नास्तिकों एवं यवनों का उद्धार किया। यवनों मतलब मुसलमान, मुसलमानों का उद्धार किया। एक बार कृष्ण प्रेम के रस में लीन ये काजी के भवन में के समक्ष उन्मत्तता पूर्वक नृत्य करने और कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। आप सोचिए उन दिनों मुसलमानों का शासन था और काजी वो किसी एक स्थान के जो काजी होते थे तो उनके पास पूरी शक्ति होती थी, किसी का भी जो है दमन कर दें, किसी की हत्या कर दें, किसी को बलपूर्वक मुसलमान बना दें, कुछ भी कर दें। और मुसलमानों का शासन था तो कोई सुनवाई भी नहीं होती थी, है ना, कि काजी के हाथ में सब कुछ शासन होता था, अधिकार होता था, शक्ति होती थी। तो काजी के घर के सामने पहुंच गए और काजी जो है अगर नफरत करे हिंदुओं से और कीर्तन से तब तो और ज्यादा खतरा है, उसके घर के सामने जाके कीर्तन करना और अकेले जाकर के कीर्तन करना। लेकिन चले गए, उन्मत्त हैं, उन्मत्ता पूर्वक नृत्य करने लगे और कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे, और वो भी रात के समय, रात के समय, और भी उसकी नींद को जो है खराब करने के लिए आ गए। कुपित मुसलमान दंडाधिकारी, दंडाधिकारी जिसको काजी को बोलते हैं, दंडाधिकारी, दंड देने के जिसको पास अधिकार हो, तो कुपित मुसलमान दंडाधिकारी शांति भंग करने हेतु उन्हें प्रताड़ित करने के लिए अपने घर से बाहर निकल आया, और उसके इशारे पर जो कुछ भी हो जाएगा, वो थोड़ा सा इशारा कर दे, बंदी बना लेंगे, कुछ भी इशारा कर दे, पिटाई कर देंगे, कुछ भी इशारा कर दे, जान से मार देंगे, उसके इशारे पर सब कुछ होगा। वो आ गया उनको दंडित करने के लिए, किंतु गदाधर दास के उज्जवल आकर्षक रूप को देखते ही काजी स्तब्ध रह गया, उसका क्रोध शांत हो गया, स्तब्ध रह गया। स्तब्ध का मतलब है आगे नहीं बढ़ पाया, देखने लगा क्या अद्भुत जो है भाव था इनका। गदाधर ने स्नेह पूर्वक काजी को आलिंगनबद्ध किया और कहा, हरि नाम रसामृत के वितरण द्वारा दिव्य प्रेम से सबका उद्धार करने हेतु गौर नित्यानंद प्रकट हुए हैं। सूचना दी, आधी रात में जाकर के उसको समाचार देने के लिए आए, आधी रात में जब कोई सो रहा हो उसको समाचार देने आए हैं। लेकिन इतना समाचार दिव्य है, इतना आवश्यक है कि आधी रात में भी समाचार दिया जा सकता है। ये मधुर हरिनाम आप क्यों नहीं लेते हो? मैं कल हरि नाम लूंगा, काजी ने उत्तर दिया। मैं कल हरि नाम लूंगा, अनजाने में काजी के मुख से हरि नाम सुनकर गए, और ये प्रभावशाली हरि नाम आपके पापों का नाश कर देगा और आपके जीवन को निर्मल बना देगा। हरि बोल, इतना इतनी श्रद्धा कि आपने बोल दिया है, हो गया तुम्हारा सब काम हो गया। उस दिन से काजी ने गदाधर दास गोस्वामी की शरण ग्रहण कर ली, उसकी इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है, गदाधर दास गोस्वामी की समाधि। तो इनके विषय में चैतन्य भागवत में कुछ लिखा हुआ है, तो उसको आप सुनिए। नित्यानंद प्रभु जो है इनके घर में आए, नित्यानंद प्रभु गदाधर दास के मंदिर में उनको प्रसन्न करने के लिए गए। यहाँ मंदिर का मतलब घर, गदाधर दास का जो घर है वही मंदिर है। तो आजकल तो घरों के अंदर मंदिर होते हैं तो बहुत थोड़े से हिस्से में होते हैं, कोई कमरा होता है, कोई कोना होता है, लेकिन जो बहुत बड़े भक्त होते हैं तो उनका घर जो है बहुत छोटा होता है, मंदिर ज्यादा बड़ा होता है, अपने घर में मंदिर ज्यादा बड़ा बनाते हैं। तो गदाधर दास के मंदिर में उनको प्रसन्न करने के लिए नित्यानंद प्रभु आए। गदाधर दास जी गोपी भाव में अत्यंत परम आनंदमय हो रहे थे, मस्तक पर गंगा जल का कलश लेकर निर्वधि चिल्लाते रहते, कोई गोरस ले लो, गोरस ले लो। और उनके मंदिर में परम सुंदर श्री बाल गोपाल की मूर्ति थी। बाल गोपाल की मनोहर मूर्ति को देखकर नित्यानंद ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपने वक्षस्थल पर ले लिया, उठा करके बाल गोपाल जी को नित्यानंद प्रभु ने अपनी छाती से लगा लिया। जब छाती से लगा लिया तो एक बहुत विशेष घटना मानी भक्तों ने, बहुत विशेष घटना मानी। क्यों? बाल गोपाल अनंत देव के हृदय में आ गए, मतलब सैयाही तो हैं ये, अनंत देव सैयाही तो हैं, अनंत शेष। तो अनंत शेष की छाती में जब बाल गोपाल आ गए तो क्या हो गया, ये सही स्थान पर आ गए। तो जो भक्त थे जब देखा तो विशाल रूप से हरि ध्वनि की, बहुत मतलब हरि ध्वनि की, और मल्लों के राजा नित्यानंद प्रभु हुंकार करके गोपाल लीला में नृत्य करने लगे। गोपाल भाव आ गया उनके अंदर भी, मल्लों के राजा नृत्य करने लगे। माधवानंद घोष ने दान लीला का गान किया, ये दान लीला भगवान जो है सांकरी खोर जो बरसाना में है, दो पर्वतों के बीच में एक संकरा रास्ता है, तो वहां पर दान लीला करते थे ना, तो दान लीला का गान किया माधवानंद घोष ने, जिसे सुनकर नित्यानंद प्रभु बड़े संतुष्ट हुए। भाग्यवान माधव घोष की ऐसी दिव्य ध्वनि थी जिसे सुनकर नित्यानंद प्रभु आविष्ट हो जाते थे। तो ये गदाधर दास गोस्वामी के घर में ही ये सब लीला हुई। पुण्यवान श्री गदाधर दास को संग लेकर नितिन प्रभु अपने आनंद में दान खंड का नृत्य करने लगे। वही दान खंड दान लीला। गदाधर दास को गोपी भाव में बाहरी ज्ञान नहीं था, वे निरंतर ही गोपी भाव में रहते थे। नित्यानंद प्रभु ने दान खंड लीला सुनकर जो नृत्य किया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ओंकार करिया नित्यानंद मल्ल राय करी तेला गीला नृत्य गोपाल लीलाए। दान खंड गाये न माधवानंद घोष सुने अवधूत सिंह परम संतोष। भाग्यवंत माधवे रहे न दिव्य ध्वनि सुनिते अविष्ट है अवधूत मणि। सुकृति श्री गदाधर दास करे संगे दान खंड नृत्य प्रभु करी निज रंगे। प्रेम भक्ति के जितने विकार हैं उन सबको प्रकाश करके अनुपम नृत्य किया जिसने नित्यानंद प्रभु ने। नृत्य गीत की भंगिमा बिजली के समान थी। सोचिए बिजली कैसी होती है, बिजली कितनी तेज चलती है, जिस प्रकार से जो है विद्युत के समान नित्यानंद प्रभु का जो है नृत्य हो रहा था उसमें। और भुजा संचालन की महिमा बड़ी अद्भुत थी। कैसी अद्भुत नेत्र भंगी, कैसी सुंदर हंसी थी, कैसा अद्भुत सिर का चलना होता था। दोनों सुंदर चरणों को इकट्ठा करके कैसे जोर जोर से मनोहर उछाल ले रहे थे नित्यानंद प्रभु। मतलब दोनों पैरों को इकट्ठा करके और उछलते हैं नित्यानंद, समझ रहे हो, दोनों पैरों को इकट्ठा करके उछलना है ना। ये नित्यानंद प्रभु का नृत्य इस प्रकार से भी होता था। मनोहर उछाल ले रहे थे। प्रेम रस भरी दृष्टि से श्री नित्यानंद प्रभु जिस ओर देखते उसी ओर के स्त्री पुरुष कृष्ण के सुख में डूब जाते थे। ऐसा उन्होंने ऐसी अक्षय कृपा दृष्टि की जिसके कारण किसी को भी आनंद में अपनी देह की सुधि नहीं रही। जिस भक्ति की वांछा योगींद्र आदि मुनिगण करते हैं वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से सर्वसाधारण जन आस्वादन करते हैं अपनी दृष्टि के द्वारा। बड़े बड़े योगी कितने जन्मों में भी नहीं पा सकते वो जो है भाव, जो प्रेम का भाव है वो नहीं पा सकते कई जन्मों में, और नित्यानंद प्रभु केवल अपनी दृष्टि के द्वारा दे देते हैं वो प्रेम, है ना। तीन दिन तक ना खाने से हाथी के समान मनुष्य भी चल नहीं पाता है कि नहीं। तीन दिन तक ना खाए तो हाथी के समान मनुष्य भी नहीं चल पाता और देह बहुत क्षीण हो जाती है। लेकिन एक महीने तक किसी बच्चे ने भोजन नहीं किया, बड़ों की तो छोड़ो बात, बच्चे ने भी भोजन नहीं किया एक महीने तक। नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि से मतलब ऐसा आश्चर्य हुआ, एक महीने तक किसी बच्चे ने भी भोजन नहीं किया। क्यों? उस प्रेम सुख में। और उन सभी के व्यवहार सिंह के बल के समान होते थे, शेर की जैसा बल, शेर जैसी शक्ति है। सोचिए क्या अद्भुत। गदाधर दास के घर में जो है क्या अद्भुत लीला हुई। जे भक्ति वांछेन योगिंद्रादि मोनि गणे नित्यानंद प्रसादे सा भुंजेते तेजने। हस्ती समय जन न खाई ले तीन दिन चलिते न पारे देह है अति छीन। एक मास एको शिशु न करे आहार तथापि सिंह प्राय सर्व सर्व व्यवहार। नित्यानंद प्रभु ने ऐसी शक्ति का प्रकाश किया तथापि चैतन्य की माया से कोई भी उनके तत्व को समझ नहीं सका। चैतन्य महाप्रभु की माया ऐसी है कि कोई नहीं समझ पाया कि नित्यानंद प्रभु कौन है। इस प्रकार कुछ दिन नित्यानंद प्रभु प्रेमानंद रस में गदाधर दास के घर में रहे। गदाधर दास के शरीर में बाहरी ज्ञान नहीं था और सभी से निरंतर हरि बोल इस प्रकार कहलाते रहते थे। बाह्य नाहीं गदाधर दासे रसरीरे निरवधि हरि बोल बोलाए सब हरे। उसी ग्राम में एक बड़ा दुष्ट काजी रहता था। वो कीर्तन से अपार द्वेष करता था, गदाधर दास तो प्रेमानंद में मस्त रहते तो एक रात्रि को उसी काजी के घर चले गए। रात को समय मिला उनको जाने का, रात्रि को काजी के घर चले गए। दिन में तो भक्तों के संग में रहते तो कुछ याद नहीं, होश नहीं है, रात में उनको होश आया तो काजी चले गए। जिस काजी के भय से मनुष्य अदृश्य होकर भाग जाते हैं उसी के घर रात को चले गए। निरंतर हरि ध्वनि करते करते काजी घर में गदाधर दाजी प्रविष्ट हो गए, घुस गए, घर के अंदर घुस गए। काजी के सब लोग केवल देखते रह गए, कौन है ये? कोई रोक नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं रोकने की। ऐसे निर्भय होकर के जा रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं, जो रोकने वाले वो डर गए। भगवान अगर चाहे तो किसी के अंदर, किसी के दिल में डर पैदा कर दें, तो रोकने वालों के दिल में डर पैदा हो गया और ये जो है निर्भय होकर के अंदर घुसते चले गए। किसी के मुख से कोई शब्द तक ना निकला। गदाधर दास ने कहा, अरे काजी बेटा कहाँ है, शीघ्र कृष्ण कृष्ण बोल, नहीं तो मस्तक उड़ा दूंगा तेरा। और काजी को गुस्सा आया, अग्नि की तरह जलता हुआ वो जो है बाहर आया। गदाधर दास को देखते मात्र स्थिर हो गया। काजी ने कहा, हे गदाधर तुम यहां क्यों आए? तब गदाधर ने कहा, कुछ बात है, कुछ बात इसलिए आया। श्री चैतन्य चंद्र नित्यानंद प्रभु अवतार लेकर जगत के मुख से हरि हरि बुलवा रहे हैं, केवल मात्र तुमने ही हरि नाम नहीं बोला है। वही तुमसे बुलवाने को आया हूं मैं। जे काजी रे भये लोक पलाये अंतरे, निर्भये च लीला निशा भाग तारे घरे, निरवधि हरि ध्वनि करीते करीते, प्रविष्ट है लगी अकाजी रे बाड़ीते, देखे मत रही अकाजी रे सर्व गने, कहारो बलि ते के छुना ऐसे बदने। गदाधर बोले, अरे काजी बेटा कोथा, झाट कृष्ण बोले न ये छिंडो ए माथा। अग्नि हे न क्रोध काजी हाइले बाहिर, गदाधर दास देखी मात्र हाइल स्थिर। काजी बोले, गदाधर तुम्हें के ने ए था, गदाधर बोले न आई अच्छा ये किछु कथा। श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु अवतारी, जगतेर मुखे बोलाई ला हरि हरि, सब तुम्हें मात्र नहीं बोले हरि नाम, तहा बोलाई ते आई लांग तुम स्थान। परम मंगल हरि नाम बोले तुम्हें, तुम्हारे सकल पाप उद्धारी आमी। गदाधर बोले कि तुम परम मंगल में हरि नाम बोलो, मैं तुम्हारा सब पापों से उद्धार करने के लिए आया हूँ। यद्यपि काजी बड़ा हिंसक चरित्र वाला था, तथापि उसने कुछ नहीं कहा, स्तंभित होकर खड़ा रह गया। काजी ने हंसकर कहा, हे गदाधर दास सुनो, आज तो तुम घर को जाओ, मैं कल हरि नाम लूंगा। उसके मुख से हरि नाम मात्र सुनते ही गदाधर दास जी प्रेमानंद सुख में पूर्ण हो गए। गदाधर दास ने कहा, कल की क्यों कहते हो, अभी तो तुमने अपने मुख से हरि नाम बोला है, जब तुमने हरि नाम ग्रहण कर लिया तब तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। परम उन्मत्त गदाधर ने यूं कहकर हाथ से ताली बजाते हुए बहुत नृत्य किया, उसके सामने खूब नृत्य किया। जिनके शरीर में नित्यानंद का अधिष्ठान है, ऐसे गदाधर दास कुछ समय में अपने मंदिर आ पहुंचे। श्री चैतन्य पार्षदों में जिनकी गणना है, उन गदाधर दास जी की इस प्रकार की महिमा है। गदाधर दास बोले, आर काली केने ए ता बाली लहरी आपने बदने, आर तोर अमंगल नाही कोन छड़े, जखने करी लहरी ना मेरे ग्रहणे, एत बलि परम उन्मादि गदाधर, हाथे ताली दिया नृत्य करे बहुतर। जिस काजी की हवा भी साधु जनों को नहीं लगती थी, उसकी हवा लगने मात्र से जाति भ्रष्ट हो जाती थी, ऐसे दुष्ट भी हिंसा धर्म छोड़ दें, इसी को कहते हैं कृष्णावेश का कार्य। कृष्णावेश, जिसके शरीर में सच्चा कृष्ण भाव हो, उसे अग्नि सर्प व्याघ्र कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। ब्रह्मादिकों के अभीष्ट जो सब कृष्ण भाव हैं, और गोपी गणों में जो सब अनुराग है, ये सब भाव अनुराग नित्यानंद ने अपने नेत्रों के इशारे से अपने दासों को प्रदान कर दिए थे। ऐसे गदाधर दास, हे भाई ऐसे नित्यानंद जी की चरण कमलों की सेवा करो, अहो जिनकी कृपा से श्री चैतन्य देव की शरण मिलती है। सत्य कृष्ण भाव जय हय जाहारे शरीरे अग्नि सर्प व्याधि व्याघ्रो लंघिते नारे पारे ब्रह्मा देव अभिष्ट जैसा वे कृष्ण भाव गोपी गणे व्यक्त जैसा कल अनुराग इंगित से सब भाव नित्यानंद राय दिले न सकल प्रिय गणे रे कृपाए भज भाई हे न नित्यानंद रे चरण जहाँ रे प्रसाद है चैतन्य शरण। तो गदाधर दास के विषय में हमने कुछ सुना और धनंजय पंडित धनंजय पंडित के विषय में थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है और फिर कुछ हम अन्यत्र से भी सुनाएंगे आपको पढ़ के। चैतन्य भागवत ने धनंजय पंडित का वर्णन एक विलक्षण महंत के रूप में किया गया है, अर्थात एक महान व्यक्ति के समस्त लक्षणों द्वारा विभूषित। महाप्रभु की आज्ञा पर वृंदावन जाने के पूर्व उन्होंने भगवान गौरचंद्र की नवदीप कीर्तन लीला में भाग लिया। यहाँ पर क्या बताया गया है कि धनंजय पंडित के शरीर में महापुरुष के लक्षण थे। महापुरुष के लक्षण जैसे होते हैं, जैसे भुजाएं आजान लंबित हों, घुटने तक लगते हैं, है ना, नाभि गहरी हो, है ना, नेत्र विशाल हो, जो ललाट है वो ऊंचा हो, तो ये जो है महापुरुष के लक्षण है। तो महाप्रभु की आज्ञा से ये वृंदावन में आए, धनंजय पंडित वृंदावन में आए, है ना। तो उसके पहले उन्होंने भगवान गौरचंद्र की नवदीप कीर्तन लीला में भाग लिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की नवदीप में जो कीर्तन लीला हुई इसमें उन्होंने भाग लिया और फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ये फिर कहां पर आ गए, वृंदावन में आ गए। केवल एक कमंडल धारण किए किंतु श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य के प्रेम में मग्न उन्होंने व्यापक भ्रमण करके प्रचार किया। इन्होंने गौर नेताई श्री गोपीनाथ और श्री दामोदर के अर्चा विग्रहों की स्थापना की। ब्रज लीला में ये भगवान बलराम के द्वादश गोपालों में से एक हैं, वसुदामा। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है, पुरा सुदाम नाम आसीत यह ठक्कुर सुंदर वसुदाम सखा यश्चा पंडित श्री धनंजय। पूर्व काल के सुदामा नामक गोपाल अब सुंदर ठाकुर हुए और वसुदामा नामक सखा श्री धनंजय पंडित हुए। ठीक है, तो धनंजय पंडित ये कृष्ण की लीला में 12 गोपालों में से एक हैं, है ना। जो द्वादश गोपाल हैं ये क्या हैं, वीआईपी हैं, जैसे अष्ट सखियां, है ना, तो 8 सखियां जो है विशेष हैं, राधा रानी की सखियां। ऐसे कृष्ण के जो सखा हैं गोपाल उनमें 12 गोपाल विशेष हैं, उनमें से एक कौन है, वसुदामा। तो ये धनंजय पंडित के रूप में चैतन्य लीला में प्रकट हुए हैं। ये ब्रज लीला में वसुदामा सखा थे, द्वादश गोपालों में एक हैं। इनके पिता का नाम श्रीपति वंद्योपाध्याय और माता का नाम श्रीमती कालिंदी देवी था। जाड़ ग्राम के निवासी थे। इन्होंने श्री गौरनेताई गोपीनाथ और श्री दामोदर के अर्चा विग्रहों की स्थापना की। बाल्यकाल से ये श्री तुलसी को तीनों काल श्रद्धा सहित नियम पूर्वक साष्टांग प्रणाम करते थे। बचपन से इनका एक नियम था, क्या नियम था, तीनों समय तीन बार क्या करते थे, तुलसी को जो है श्रद्धापूर्वक साष्टांग प्रणाम करते थे। विवाह के अल्पकाल बाद ही संसार को छोड़ दिया। जब इनका विवाह हुआ तो जल्दी ही विवाह के बाद संसार को छोड़ दिया, लेकिन ये बताया नहीं उन्होंने अपने घर में, ये नहीं बताया कि मैं संसार को छोड़ के जा रहा हूं। बहाना क्या बनाया कि तीर्थ पर्यटन के लिए जा रहा हूं। आप समझ रहे, धनंजय पंडित ने घर छोड़ दिया था तो इन्होंने अपनी अपनी जानकारी में घर छोड़ दिया था कि घर वापस नहीं आएंगे, लेकिन घर वालों की जानकारी में क्या किया था, तीर्थ यात्रा के लिए घर छोड़ा था कि वापस आना है तीर्थ यात्रा के लिए। मतलब ऐसा भी कपट कभी कभी फिर लोग करते हैं, तो तीर्थ यात्रा के नाम पर जो है घर से निकले थे, नहीं तो कैसे आज्ञा मिलती। तो तीर्थ यात्रा के नाम पर जो है इन्होंने घर छोड़ा था और रास्ता खर्च के लिए बहुत सा धन दिया पिता ने। पिता बहुत धनी थे तो बहुत धन दिया रास्ते में खर्चा के लिए, लेकिन उस धन का इन्होंने क्या किया, इनके पास जो धन था इन्होंने क्या किया, महाप्रभु के दर्शन करते ही उनके चरणों में समर्पण कर दिया पूरा धन, सबका सब धन जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया और केवल कमंडलू हाथ में लेकर चल दिए, केवल कमंडलू लिया। तो इनके पास जितना धन था चैतन्य महाप्रभु के चरणों में डाल दिया, अपना जीवन धन भी दे दिया, अपना शरीर अपना जीवन भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से फिर कहां पर आ गए, वृंदावन में आ गए। इन्होंने शीतल ग्राम के अनेक डाकू पाखंडियों का उद्धार किया, उन्हें भक्त बना दिया। श्री महाप्रभु के दर्शन के बाद वृंदावन ही चले आए। श्री वृंदावन की यात्रा के बाद पुनः शीतल ग्राम में ही जाकर निवास करने लगे। इतना इनके विषय में लिखा हुआ है। अब श्रीनिवास आचार्य के बारे में हम सुनेंगे। सुनिए ध्यान से, श्रीनिवास आचार्य कटवा में गौरांग महाप्रभु का संन्यास हुआ था, समझ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया था कहां पर, कटवा ग्राम में। कैसे संन्यास लिया था, केशव भारती से संन्यास लिया था। तो उस संन्यास की लीला का दर्शन किया था चैतन्य दास नाम के एक भक्त थे, उन्होंने संन्यास लीला का दर्शन किया था और उनकी गर्भवती पत्नी थी। तो संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहां पर आ गए, जगन्नाथपुरी में आ गए। तो ये जो है अपनी पत्नी के साथ चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए, जगन्नाथपुरी में आए। तो पत्नी गर्भवती थी, तो भगवान ने जो है इनकी पत्नी को देख करके कहा कि शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम होगा श्रीनिवास। सोचिए, बच्चे का जो है नामकरण भगवान ने गर्भ में ही कर दिया। भगवान ने कहा कि इस बच्चे का नाम जो है होगा श्रीनिवास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा और श्रीनिवास के माध्यम से रूप व सनातन के सब भक्ति शास्त्रों का वितरण होगा। श्रीनिवास आचार्य तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इनका, श्रीनिवास आचार्य का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो पिता के परलोक से धारने के पश्चात श्रीनिवास गौरांग महाप्रभु के शेष पार्षदों के दर्शन के लिए कटवा नवदीप और जगन्नाथपुरी गए। तो जब तक इनके पिता थे जीवित तब तक तो अपने पिता की सेवा में रहे, जब चैतन्य दास ने अपना शरीर छोड़ दिया तो फिर ये सबसे पहले कहां गए, कटवा में। जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे उन सबका दर्शन किया, है ना। मतलब जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भक्तों के दर्शन करना, भक्तों का संग करना, है ना। तो सबसे पहले कटवा में गए चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का दर्शन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की लीला समाप्त हो चुकी है, चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से जा चुके हैं, तो उनके जो भक्त हैं कटवा में उनका दर्शन किया। फिर नवदीप में गए, वहां पर चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे उनके दर्शन किए। फिर जगन्नाथपुरी में, है ना, उन सब भक्तों ने दर्शन किए। उन्होंने श्रीनिवास को आशीर्वाद दिया, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अमूल्य उपदेश दिए। तो ये जो है बहुत बड़ी शिक्षा है। उन्होंने श्रीनिवास को गौरांग प्रेम में उनकी निमग्नता देखकर वे जान गए कि गौर शक्ति का साक्षात स्वरूप है। भक्तों को भी पता चल गया इनका इतना प्रेम था। फिर वृंदावन में आकर के 12 वनों की यात्रा की। वृंदावन में 12 वन है, तो इसको 12 वन मिला करके वृंदावन ही बोलते हैं, जिसमें लिखा वृंदावन, वृंदावन नहीं ब्रजमंडल बोलते हैं, है ना। अभी ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही ना, तो ब्रजमंडल में 12 वन हैं, उनमें से एक वृंदावन भी है, है ना। और दूसरे भी वन हैं, जैसे भांडीर वन, बहुल वन, ताल वन, कुमुद वन, मधुवन, काम वन, लोह वन, महावन, है ना। जैसे 12 वन है, तो उन्होंने 12 वनों की यात्रा की। और गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। श्री जीव गोस्वामी ने इन्हें गौड़ीय वैष्णव धर्म के संपूर्ण दर्शन की शिक्षा प्रदान की। तो श्रीनिवास आचार्य के दीक्षा गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं और शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी। इनकी विस्तृत विद्वत्ता को पहचानते हुए श्री जीव ने इनको आचार्य को बाध्य सम्मानित किया। श्रीनिवास आचार्य किसी यूनिवर्सिटी से जो है किसी को कोई डिग्री मिलती है, ऐसे जीव गोस्वामी जो है एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने जो है इनको आचार्य की उपाधि दी। तो तीन लोगों को इकट्ठा उन्होंने पढ़ाया था जीव गोस्वामी ने, तीन लोगों का एक बैच था, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, तीन लोगों को। तो तीनों को अलग अलग उपाधि दी, नरोत्तम को ठाकुर की उपाधि दी नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद को प्रभु की उपाधि दी श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद पंडित जो भी श्यामानंद पंडित, और इनको उपाधि दी आचार्य श्रीनिवास आचार्य। विशेष रूप से विद्वान थे। श्री जीव की आज्ञा पर श्रीनिवास और उनके दो मित्रों श्यामानंद प्रभु एवं नरोत्तम दास ठाकुर ने दिव्य ग्रंथ वितरण की प्रथम मंडली का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रजवासी संकीर्तन मंडली की जय। उन्होंने वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों की एक बैलगाड़ी भरी और बंगाल उड़ीसा में सर्वत्र उनका वितरण किया। तो सबसे पहले देखो तीन लोगों की एक टोली है जिसमें गोस्वामी के ग्रंथ ब्रज से बाहर निकले ना। अब सोचिए कि ये गोस्वामियों के ग्रंथ जो है कितने अमूल्य थे, तो हाथ से लिखे हुए ग्रंथ हैं और वो ग्रंथ जो है ये ऐसे बाइंडिंग भी नहीं है, लूज पेपर है, ताल पत्र है ना। तो गोस्वामी के ग्रंथ हाथ से लिखे गए, उन दोनों छपाई नहीं होती थी है ना। तो ये जो है ग्रंथ जो है मतलब एकमात्र कोई हस्तलिखित ग्रंथ थे और उनकी कोई कॉपी नहीं थी। अगर मान लो कुछ हो जाए तो फिर मिलने वाले नहीं, और फिर दूसरी कॉपी बनाने के लिए पूरा हाथ से लिखना पड़ेगा, कितना परिश्रम था। तो इस तरह से जो है जीव गोस्वामी ने मतलब भेजे इन ग्रंथों को कि भाई ये तीन लोग जो है अलग अलग स्थानों में इनकी और कॉपी बनवाएंगे और इस तरह से वितरण करेंगे ग्रंथों का वितरण। अब ग्रंथों का वितरण कितना कठिन कार्य था उस समय, अभी आजकल ग्रंथों का वितरण कितना आसान हुआ है, प्रेस में जो है ऑर्डर दे दिया 1,00,000 गीता, 4,00,000 गीता और एक हफ्ते में 4,00,000 गीता छप कर गया आगे। और वही गीता, अब मान लो इतनी पतली किताब भी एक व्यक्ति जो है मतलब लिखता रहेगा, कितना परिश्रम लगेगा और कितने दिन लगेंगे उसको पूरा करने में, कितना कठिन कार्य। तो ये कार्य जो है इन तीन लोगों को दिया गया था। तो इन्होंने वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों की एक बैलगाड़ी भरी और बंगाल उड़ीसा में सर्वत्र इनका वितरण किया। श्रीनिवास आचार्य ने अनेक भक्तों रामचंद्र कविराज और अन्य को दीक्षा दी, भक्तिमय गीतों षड गोस्वामी अष्टकम की रचना की। षड गोस्वामी अष्टकम पहले कभी हमारे मंदिर में गाया जाता था, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन करो है ना। तो छह गोस्वामियों का जो अष्टकम है ये बहुत ही दिव्य है और बहुत मंगलकारी है। छह गोस्वामियों का अष्टकम अगर गाएं तो इसमें क्या है, जितनी बाधाएं सब दूर हो जाती हैं छह गोस्वामियों के नाम से, उनकी स्मरण से। तो ये उन्होंने बनाया था सात गोस्वामी अष्टकम और एक विशिष्ट कीर्तन शैली प्रवर्तित की। कीर्तन में अग्रता करते हुए कभी कभी वे इतने दीर्घ काल तक कीर्तन करते रहते कि कंठ अवरुद्ध हो जाता था, गला रुंध जाता था। उन दोनों माइक नहीं होता था, बिना माइक के कीर्तन करते थे है ना। तो कितनी आवाज होती थी, कितनी तेज आवाज होती थी उसमें। प्रचार व लेखन के बाहरी कार्यकलापों के अतिरिक्त श्रीनिवास आचार्य उत्कट रागानों का भजन भी करते थे। अभी रागानों का भजन क्या है, ये तो प्रचार कार्य के जो ये तो सब बाहर के हैं, लेकिन रागानों का भजन ये क्या है, आंतरिक कार्यकलाप है। रागानों का भजन श्री वृंदावन धाम के नित्यवासियों जैसे गोपियों के भावों मनोदशाओं पर आधारित राधा कृष्ण की स्वतः स्फूर्त मानसिक आराधना है। तो मन के द्वारा जो है आराधना होती है और स्वतः स्फूर्त स्फूर्ति होती है। ये पूजा जो है मानसिक आराधना जो है, मानस पूजा जो है ये स्वतः स्फूर्त होती है ना। तो मानसिक सेवा करते समय इन ध्यान अवस्थाओं से पुनः बाहरी चेतना पर लौटने पर अपने संग प्रायः वो सामग्री ले आते थे, वो सामग्री प्रकट हो जाती थी जो आध्यात्मिक जगत की सामग्री थी। एक बार श्रीनिवास ने गौरांग महाप्रभु को अपने मन में एक रत्न सिंहासन पर बैठाया। अब सुने ध्यान से, इन्होंने क्या किया, महाप्रभु तो इस पृथ्वी में नहीं है, वो तो अपनी लीला समाप्त करके चले गए, लेकिन मन में जो है इन्होंने महाप्रभु को क्या किया, एक रत्नों के सिंहासन पर बैठाया। अब वहां वृंदावन में जब रहते थे तो रत्नों के सिंहासन कहां मिलेंगे, ये मन से ही जो है रत्न का सिंहासन तैयार कर दिया और उसमें गौरांग महाप्रभु को बिठाया और फिर क्या किया, सब पूजा की आरती उतारी, मानसी पूजा कर रहे ना तो आरती उतारे, और फिर सोने के मूठ युक्त चावर से और पंच पुष्पहार से भगवान की पूजा की, पांच प्रकार के फूलों का हार बनाया, क्या मन में ही पांच प्रकार के फूलों का हार बनाया है? और गौरांग महाप्रभु को पहना दिया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गौरांग महाप्रभु ने हार अपना उतार करके श्रीनिवास को पहनाया। अब देखो मन में ही जो है ये सब आया। तो मन की जो पूजा है वो कुछ तो ऐसी होती है कि अपने प्रयास से वो कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो वो नहीं सोच रहे हैं लेकिन मन में आ रही हैं। तो वो क्या है, इनकी पूजा से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने अपने गले का हार उतारा और इनको पहना दिया। अब रत्नों के सिंहासन पर चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और ये नीचे पूजा कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु देखो मन में ही सब हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपने गले का हार उतार करके इनको पहना दिया। तो इतनी कृपा की, इन्होंने आशा भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी कृपा चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं मेरे ऊपर कि अपने गले का हार मुझे पहना दें। तो तुरंत इनका ध्यान टूट गया। क्यों ध्यान टूट गया, तो इतनी ज्यादा खुशी, इतना ज्यादा मतलब होता ना कि तो वो हड़बड़ा गए ना एकदम, तो ध्यान टूट गया। और जब ध्यान टूट गया तो क्या हुआ, बाहरी चेतना में लौटने पर आश्चर्य से श्रीनिवास ने वो सुगंध युक्त पुष्पहार को अपने कंठ में लटकता पाया, वो गले में आ गई माला। कितना आश्चर्य, अब वो माला वैसे कुछ नहीं थी, वो तो अपना ध्यान कर रहे हैं मन में, अब वो आंखें भी बंद किया होगा उन्होंने, अब बंद आंखों में ना तो रत्नों का सिंहासन है, न चैतन्य महाप्रभु है, न फूलों का हार है, कुछ नहीं है। लेकिन जब बाहरी चेतना में आए तो उनके गले में क्या है, फूलों का हार है। एक दूसरी घटना है, श्रीनिवास मणिमंजरी नामक अपने सिद्ध स्वरूप में श्रीमती राधा रानी की होली लीला में सहायता कर रहे हैं, ये मणिमंजरी है। तो मणिमंजरी के रूप में ये मन में ही जो है क्या दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण की होली लीला, रंग कि रंग खेल रहे हैं राधा कृष्ण एक दूसरे साथ रंग खेल रहे हैं। तो गोपियों ने मणिमंजरी से कहा कि राधिका को रंग देती रहो, श्याम के विरुद्ध इस संग्राम में राधा रानी कहीं हार ना जाएं, तो राधा रानी की सहायता करो। कि कृष्ण जो है रंग फेंक रहे हैं और राधा रानी को हार ना हो जाए तो तुम रंग सप्लाई करते रहो राधा रानी को। तो उस घोर युद्ध से धरती हिलने लगी, धम धम, यहाँ कृष्ण जो है रंग फेंक रहे हैं और यहाँ राधा रानी गोपियां, तो धरती कैसे हो रही है, धम धम हो रही है। तो उससे क्या हुआ कि इनका ध्यान टूट गया, इतना ज्यादा धरती हिल रही है राधा कृष्ण के इस रंग लीला में, इनका ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूट गया तो क्या हुआ, वो दिव्य धाम की जो रंग थे, कई प्रकार के रंग, सिर से पैर तक उनका पूरा शरीर रंगा हुआ था। हरिभो इस प्रकार से श्रीनिवासाचार्य के बारे में हमने कुछ बातें सुनी। तो आज पांच त्योहारों की हमने चर्चा की, ठीक है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा आपका, वो हैंड माइक नहीं क्या, जोर से बोलो, चलो जोर से बोलो। हाँ, तो इनका प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने एक मायावादी सन्यासी से दीक्षा ली केशव भारती से, तो इसका क्या मतलब, इसके पीछे क्या कारण है, हाँ क्या शिक्षा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या शिक्षा है, तो ये जो है चैतन्य चरितामृत में काफी विस्तार से बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि कृष्ण प्रेम से उन्होंने पूरे संसार को डुबा दिया है, कृष्ण प्रेम की बाढ़ ला करके पूरे संसार को डुबा दिया है, लेकिन जो मायावादी सन्यासी हैं वो पहाड़ की तरह हैं, पहाड़ नहीं डूबे। आप सुन रहे, जब पानी की बाढ़ आती है तो सब स्थान डूब जाते हैं लेकिन पहाड़ नहीं डूबते हैं, भाई मायावादी क्या है, पहाड़ की तरह है सन्यासी। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है मायावादी सन्यास ले लिया, तो उन्हीं के ही जो है मतलब संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास दीक्षा ली है ना, तो उनकी योजना यही थी कि फिर जो है उन सब मायावादियों को क्या किया जाए, भक्त बनाया जाए, और फिर वो लीला हुई ना काशी में। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है 10,000 सन्यासियों के साथ में, फिर जब चैतन्य महाप्रसाद में शास्त्रार्थ करते हैं उससे फिर क्या हुआ, सब के सब जो है भक्त बन गए, है ना। और कोई प्रश्न किसी का, मल्लों का राजा नितन प्रभु को मल्लों का राजा बताया गया है, तो मल्लों का राजा का मतलब यह है कि गोपाल भाव में जब वो नृत्य करते हैं तो नृत्य भी करते हैं आपस में, कुश्ती भी लड़ते हैं। जब ये गौवें चराने जाते थे तो गौवें तो अपना काम करते हैं, चरती रहती हैं, तो उनको फिर दिन में खूब टाइम मिलता है खेलने का, कुश्ती लड़ने का, दंड युद्ध करने का, डंडा घुमाने का, डंडा फेंकने का, दिन भर जो है ये खेल करते रहते थे, तो मल्लों का भी खेल करते थे, कुश्ती भी लड़ते थे, है ना। तो नितन प्रभु जो है जो गोपाल भाव में है तो मल्लों के राजा बताए गए, और शरीर भी काफी उनका बलिष्ठ था, है ना, तो मल्ल की तरह भी जो है वो चेष्टाएं करते हैं, तो मल्लों का राजा कहा गया। तो आपका प्रश्न, हर लीला का अलग नृत्य, नृत्य हाँ एक नृत्य शास्त्र है जिसमें कि नृत्य में जो है अलग अलग लीलाएं भी दर्शाई जाती हैं, ठीक है ना, तो नृत्य के माध्यम से भी लीलाओं का जो है प्राकट होता है, लेकिन वैसे हर लीला नृत्य के रूप में नहीं होती थी, लेकिन नृत्य के रूप में लीला का वो प्रकाशित किया जाता है, एक विधि है ना, तो नितन को जो है नृत्य के माध्यम से भी कोई लीला जो है प्रकट करते हैं, कृष्ण के जन्म की लीला, वसुदेव जी ले जाते हैं कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जाते हैं, तो नृत्य के माध्यम से भी प्रकट की जाती है, तो आजकल तो बहुत चल रहा है इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा दो प्रश्न, तीन प्रश्न, अच्छा आप बोलो। अच्छा हाँ नहीं, वैसे तो इसके कई अर्थ हैं, धर्म हमारी रक्षा करेगा, जब भगवान ने कहा कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, तो वो तो तुरंत प्रत्यक्ष परिणाम भगवान बता रहे हैं कि माता कह रही है कि तुम्हारे पैरों में जो है कांटे और कंकड़ लगेंगे, तुम जो है धर्म रक्षा तो तुम्हारे पैरों को बहुत कष्ट होगा, तो भगवान बोलेगा हम अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, लेकिन ये बात हमेशा व्यवहारिक तो नहीं होती है, हमेशा व्यवहारिक नहीं होती है, ये धर्म की रक्षा में कोई व्यक्ति प्राण भी दे देता है, प्राण भी चले जाते हैं, लेकिन धर्म रक्षा करता है, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो किसी ने धर्म के लिए अगर अपना जीवन दे दिया, धर्म के लिए शरीर छोड़ दिया, लेकिन अगले जीवन में उसकी रक्षा होती है, आप समझे ना, तो इस तरह से भी इसको समझना चाहिए कि धर्म आखिरकार तो धर्म रक्षा करेगा, लेकिन कभी अगर ऐसा संकट पड़े, प्राण संकट में पड़ जाए तो धर्म को छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना, तो वो भी आपत्कालीन धर्म कहलाता है कि भाई आपत्ति काल में उस धर्म को आपने छोड़ दिया तो समझ ली क्योंकि इस संकट काल आ गया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संकट काल में धर्म को नहीं छोड़ता है तो भी धर्म रक्षा करता है, लेकिन हो सकता है कि इस जीवन में नहीं अगले जीवन में रक्षा, ठीक है ना। अच्छा आपका प्रश्न और किसका था आपका, हाँ हाँ, पशुओं की चेतना विकसित नहीं होती लेकिन गौओं की चेतना विकसित है, क्योंकि ये जो है ब्रज की गौ में है, कृष्ण की गौ में है, आप समझ ना, इनके अंदर माता का भाव है, कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। हालांकि शांत रस में है गौ में, किंतु भी इनका भाव शांत रस से वात्सल्य रस तक जाता है। ठीक है, आपका प्रश्न। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि संन्यास ले लिया तो कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन संन्यास लेने का मतलब यह नहीं है कि कृष्ण केंद्र, कृष्ण को केंद्र बनाकर कोई आसक्ति ना हो। मतलब संन्यास लेने के बाद भी अपने घर में, अपने परिवार में अगर आसक्ति है कृष्ण को केंद्र में बना करके, तो वो हो सकता है। ठीक है ना, तो चूंकि माता का जो है इतना स्नेह था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, तो उन्होंने जो है माता से आज्ञा ली, बल्कि यहां तक आदेश दे दिया, अधिकार दे दिया कि अगर तुम कहोगी तो मैं फिर से घर में आ जाऊंगा। फिर माता के ऊपर इतना भार आ गया कि मेरे कारण मेरे पुत्र का जो है वो बदनामी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने फिर ऐसा आदेश दिया कि जिससे मेरे पुत्र की बदनामी न हो, उन्होंने ये कहा, ये आदेश दिया। ठीक है ना, धन्यवाद। श्री गोपाष्टमी महामहोत्सव की, श्री गोष्ठाष्टमी महामहोत्सव की, श्री गदाधरदास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री धनंजय पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्रीनिवास आचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरि बोल।